हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। क्योंकि इस वक्त वो काफी कम कपड़ों में फूलों से भरे हुए बेड पर थी, तो उसे समझने देर नहीं लगी कि उसके साथ क्या होने वाला था। तारा परी ने जैसे ही अपने आप को बिल्कुल अर्थनग्न हालत में पाया तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, और उसने जल्दी से अपनी परी वाली जादुई शक्तियों का प्रयोग करके तुरंत अपने जादू से कपड़े पहन लिए थे। और उसने अपने आसपास अच्छी तरह से देखना शुरू कर दिया था, और जैसे उसने ये देखा कि वो राक्षस का अंश अमन पर पूरी तरह से हावी है, तो तारा का गुस्से के मारे में बुरा हाल हो गया था, और उसने अमन की मदद करने का फैसला कर लिया था। और वहीं उस राक्षस ने जैसे ही ये देखा कि तारा को होश आ गया है, तो उसका गुस्से के मारे में बुरा हाल हो गया था, और उसने गुस्से से आग के शोले अमन के ऊपर बरसाने शुरू कर दिए थे। अब वो जल्द से जल्द अपना सारा गुस्सा अमन पर उतार देना चाहता था और उसकी जान लेना चाहता था, लेकिन अमन हर बार उसे मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। लेकिन अमन ये बात अच्छी तरह से जानता था कि वो इस राक्षस का अंत नहीं कर सकता है, क्योंकि वो राक्षस बड़ा ही शक्तिशाली था। ऊपर से वो राक्षस स्वयं वहां नहीं था, केवल राक्षस का अंश वहां था। अगर राक्षस स्वयं वहां होता अपने असली शरीर के साथ, तो उसे हटाना इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। लेकिन राक्षस का शरीर तो उस वक्त परिलोक में मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ था। अमन ने जल्दी ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करके राक्षस का मुकाबला करना शुरू कर दिया था। विक्रांत पूरी तरह से बेहोश था, क्योंकि वो अब एक इंसानी रूप में था, क्योंकि उसके अंदर से राक्षस का अंश निकल चुका था। कपड़े पहनने के बाद तारा परी ने देखा कि अमन का हर वार राक्षस पर खाली जा रहा था, और वो राक्षस हर वार से अमन को चोट पहुंचा रहा था। अब अमन काफी बुरी स्थिति में पहुंच चुका था, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। इतना ही नहीं, उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो गया था, लेकिन अमन ने अभी तक हिम्मत नहीं हारी थी। वो किसी भी कीमत पर उस राक्षस को हराकर अपनी बीवी को वहां से लेकर जाना चाहता था। जब तारा ने देखा कि अगर अमन को नहीं रोका गया तो किसी भी पल उसकी जान जा सकती है, तो इसीलिए जब राक्षस का अंश अमन के ऊपर आग से बरसात कर रहा था, ठीक उसी वक्त तारा परी उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी, और उसी समय उसने अपनी जादुई छड़ी से उस राक्षस के अंश पर वार करना शुरू कर दिया था। तारा परी की शक्तियों के साथ साथ इस बार जिन्नातों के वंशज की भी शक्तियां थीं, जिसका ताप वो राक्षस ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाया था, और जल्दी ही वो वहां से गायब हो चुका था। और इस बार वो हमेशा हमेशा के लिए वापस परीलोक लौट चुका था, क्योंकि इस बार उस पर जिन्नातों के वंशज ने हमला किया था, और उन वंशज के हाथों ही उसे राक्षस की मृत्यु लिखी हुई थी, ये बात तय थी। उसके जाने के बाद तारा ने जैसे ही अमन को देखा तो तुरंत उसने उसका सर अपनी गोद में रख लिया था और उसे उठाने की कोशिश करने लगी थी। अमन सर, क्या हुआ है आपको? प्लीज अमन सर, प्लीज उठिए अमन सर। तारा अमन को उठाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उस राक्षस ने अमन को काफी ज्यादा जख्मी कर दिया था, जिसकी वजह से अमन सही से सांस नहीं ले पा रहा था। तभी तारा ने कुछ मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया था, और देखते ही देखते एक अजीब सी सुनहली सुराही उसके हाथों में थी, जो दिखने में बड़ी ही खूबसूरत थी। अचानक तारा ने उस सुराही पर कुछ मंत्र पढ़कर फूके थे, और अचानक उस सुराही ने ऊपर उड़ना शुरू कर दिया था और सीधी अमन के ऊपर उड़ेलना शुरू कर दिया था। देखते ही देखते अमन के सारे घाव भरने लगे थे, और अब एक बार फिर से अमन अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। जैसे ही अमन ने ये देखा कि वो बिल्कुल ठीक हो गया, तो काफी ज्यादा हैरान हो गया था और तारा से कहने लगा था, ये सब क्या था? आखिरकार तुमने मुझे ठीक कैसे किया? और तुम्हारे कपड़े, ये सब क्या है? वो राक्षस, उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? ये सब उस वक्त अमन को काफी अजीब लग रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से सब कुछ क्या हुआ था। तभी तारा ने अमन से कहना शुरू कर दिया था, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, और वो राक्षस वहां से वापस पाताल लोक पहुंच चुका है। अब वो यहां नहीं है, क्योंकि हमारे होने वाले बच्चे ने मुझे बचा लिया है। तारा ने जानबूझकर सारा का सारा क्रेडिट अपने बच्चों को दे दिया था, हालांकि उसके बच्चे ने भी उसकी मदद की थी, लेकिन अमन को उस वक्त यकीन दिलाना जरूरी था। इसलिए तारा परी ने सारी की सारी कहानी इस तरह से क्रिएट की कि अमन उस पर यकीन कर पाया था। और तभी अमन ने मुस्कुराते हुए तारा को गले से लगा लिया था और कहने लगा था, मुझे लगता है हमें यहां से जल्द से निकल जाना चाहिए। तभी तारा ने अमन से कहा था, लेकिन अमन सर, आप सही सलामत इस जंगल में इतनी आगे तक कैसे आ पाए, और आप सही सलामत हैं, जबकि मैंने सुना है कि ये काफी खतरनाक जगह है। तारा की बात सुनकर अमन ने बोला था, तुम्हें कैसे पता चला कि ये जंगल ये इतना खतरनाक है? तभी तारा ने अमन से कहा था, वो एक्चुअली जब मैं बेहोश थी तब वो दोनों माँ बेटा आपस में बातें कर रहे थे, तभी मैंने उनकी बातें सुनी थी कि जंगल में कोई नहीं आ सकता है, तो इसीलिए मुझे आपकी चिंता होने लगी थी, लेकिन मुझे यकीन था आप जरूर आएंगे। तभी अमन मुस्कुराते हुए तारा से कहने लगा था, मेरी प्यारी बीवी को कोई पिशाचनी के जंगल में तो क्या, पाताल लोक में भी ले जाए, मैं वहां से भी अपनी बीवी को बचा कर ले आऊंगा। उससे ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ नहीं है। अमन की बात सुनकर तारा मुस्कुराने लगी थी और कहने लगी थी, वाकई आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। तभी अमन ने आगे बढ़कर तारा को एक किस करते हुए कहा था, तुम सोच भी नहीं सकती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो। अभी फिलहाल हमें यहां से निकलना होगा, ठीक है? ऐसा कहकर जैसे ही अमन आगे बढ़ा, अचानक से उसके कंधे पर उसे दर्द महसूस हुआ था, जहां पर एक पिशाच ने उसे काटा था। तब तारा परी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। वो सोचने लगी थी, उसने तो अमन को बिल्कुल ठीक कर दिया था, तो फिर ये दर्द कैसा है? और तारा कर ने अमन से पूछा था, आपको हुआ क्या है और आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं? तब अमन, पता नहीं क्या हुआ है, जब जैसे ही मैं तुम्हें बचाने के लिए यहां आ रहा था, ठीक उसी वक्त एक पिशाचनी ने मुझ पर हमला किया था और उसने मेरे कंधे पर यहां काट लिया था। तब से इसका दर्द और निशान नहीं जा रहा है। वही राक्षस से लड़ने के बाद जितनी भी चोटें थीं वो तो सब ठीक हो चुकी हैं, लेकिन जहां पिशाच ने काटा था वो दर्द नहीं जा रहा है। जैसे ही तारा ने ये सुना वो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। उसे समझने देर नहीं लगी कि अमन के साथ क्या हो रहा है। अब इससे पहले कि तारा अमन को कुछ कहती, तभी उसके पीछे से किसी के कराहने की आवाज आई थी। वो कोई और नहीं बल्कि विक्रांत रंधावा था, अमन का बचपन का दोस्त। जैसे ही विक्रांत की आवाज अमन के कानों में पड़ी, उसका गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया था, क्योंकि अमन को रह रहकर वही सीन याद आ रहा था जब विक्रांत रंधावा बहुत कम कपड़ों में तारा को किस कर रहा था। हालांकि वो विक्रांत नहीं था, उसके अंदर राक्षस अंश था, लेकिन जिस्म तो विक्रांत का था। तो कहीं ना कहीं अमन को विक्रांत से चिढ़ होने लगी थी और साथ ही साथ उसे उस पर गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन जैसे ही विक्रांत ने अपने सामने अमन को देखा तो वो दौड़कर उसके पास आया था, उसका हाथ पकड़कर कहने लगा था, भाई मुझे बचा लो, मुझे नहीं पता भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, बहुत अजीब अजीब हरकतें मेरे साथ हो रही हैं।
मेरा सर बहुत ही ज्यादा भारी हो रहा है भाई, प्लीज मुझे बचा ले भाई अमन, प्लीज। लेकिन अमन ने उसका हाथ अपने हाथ पर से हटा दिया था, क्योंकि वो विक्रांत को अपने आसपास भी नहीं देखना चाहता था। लेकिन अब तारा समझ चुकी थी कि अब विक्रांत राक्षस के अंश से तरह पूरी तरह से आज़ाद हो चुका है, तो इसीलिए उसके साथ इस तरह का बर्ताव करना ठीक नहीं है। विक्रांत अब वाकई आपका बचपन का दोस्त है, इसके अंदर कोई राक्षस का अंश नहीं है। और शायद आप भूल रहे हैं, आपने और मैंने, हम दोनों ने एक साथ राधा का पिछला जन्म देखा था और हमें अच्छी तरह से पता है कि वो राक्षस क्या से क्या कर सकता है। तो मुझे लगता है आपको विक्रांत को माफ़ कर देना चाहिए और जल्द से जल्द इन्हें वापस भेज देना चाहिए, इनका परिवार इंतज़ार कर रहा होगा। तारा की बात सुनकर विक्रांत ने बड़ी ही पोलाइट नज़रों से तारा की ओर देखा था और सोचने लगा था कि मैं इस लड़की के साथ क्या कुछ नहीं किया, किसी और के वश में आकर मैं इस लड़की के साथ कितना गलत करने के लिए जा रहा था, लेकिन ये लड़की है कि ये मुझे ही इसके सामने डिफेंड कर रही थी। तो कहीं ना कहीं विक्रांत को अपने आप ही इंसानी रूप में गिल्ट सा महसूस होने लगा था। वहीं तारा की बात सुनकर अमन सोच में पड़ गया था और कहने लगा था, जो तुम कह रही हो बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसीलिए उसने जल्दी ही विक्रांत और तारा को लेकर वहां से जाने का फैसला कर लिया था, क्योंकि वहां वो विक्रांत को उन पिशाच का खाना बनने के लिए नहीं छोड़ सकता था। वो अच्छी तरह से जानता था अगर विक्रांत पिशाच के हाथ लग जाता तो वो पिशाच विक्रांत की कितनी बुरी हालत करने वाले थे। वैसे भी इंसानों के साथ वो बहुत ही बड़ा बुरा किया करते थे। वहीं तारा जैसे ही अमन के साथ उस जंगल से बाहर की ओर जाने लगी, तभी तारा ने अपनी जादुई शक्ति से अमन की नज़र से बचकर उस जंगल के पिशाच का सर का बाल तोड़ लिया था, जिसे अमन ने पेड़ पर बांधा था, क्योंकि तारा को कहीं ना कहीं लग रहा था जो वो अमन को लेकर जो कुछ सोच रही है कहीं वो सच तो नहीं। अगर ये सच हुआ तो अमन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाला था, इसीलिए तारा किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। वेल, जल्दी ही अमन तारा और विक्रांत को लेकर उस पिशाचनियों के जंगल से बाहर निकल चुका था। बाहर आने के बाद उसने सबसे पहले बाहर से बाहर ही अरेंजमेंट करके विक्रांत को वापस उसके घर भेज दिया था। उसे भेजने के बाद अमन तारा को जल्दी ही अपने बंगले में ले आया था। जैसे ही करिश्मा जी ने तारा और अमन को सही सलामत देखा तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी और उसने खुशी से तारा को गले से लगा लिया था और कहने लगी थी, हमें पूरे यकीन था कि हमारी बहू को कभी भी कुछ नहीं हो सकता है, आखिरकार हमारी बहू इतनी शक्तिशाली जो है। जैसे ही करिश्मा जी ने ये कहा, अमन अपनी माँ को घूर कर देखने लगा था और कहने लगा था कि आप कैसी बातें कर रही हैं मॉम, आपकी बहू और शक्तिशाली, शायद आप भूल रही हैं, आपकी बहू एक मामूली इंसान है, कोई शक्तिशाली जिन में ही है। जैसे ही अमन ने ये कहा, करिश्मा जी मन ही मन में अमन पर मुस्कुरा कर रह गई थी और सोचने लगी थी, जिस दिन मेरे बेटे को उसकी पत्नी की सच्चाई के बारे में पता चलेगा, पता नहीं मेरा बेटा उस दिन कैसा बर्ताव करेगा। खैर,
तभी करिश्मा जी ने बात बदलते हुए कहा था, अरे बेटा, अच्छा तुम भूल रहे हो, जो औरत अपने पेट में शक्तिशाली जिन्नातों के वंशज को पाल रही है, तो उससे ज्यादा शक्तिशाली औरत भला कौन हो सकती है। जैसे ही करिश्मा जी ने कहा, अमन उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा था और कहने लगा था, शायद आप सही कह रहे हैं, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। और शायद आपको नहीं पता, राक्षस के अंश से लड़ने में हमारे होने वाले बच्चे ने हमारी बहुत ही ज्यादा मदद की है। मैं तो सोच रहा हूँ, जो अभी इस दुनिया में भी नहीं आया है, वो अभी से कितना शक्तिशाली है, तो जब वो इस दुनिया में आ जाएगा तो कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। मुझे उम्मीद है कि वो इस दुनिया से काली शक्तियों का नाम वो निशान मिटा डालेगा। ऐसा कहकर अमन मुस्कुराने लगा था। वहीं अब उनके पिताजी कुछ सोच में डूब गए थे, क्योंकि अमन के पिताजी को अच्छी तरह से एहसास था कि उनसे क्या गलती हुई थी, क्योंकि हो ना हो, अमन के पिताजी का कभी काली शक्तियों के साथ अनचाहा एक कनेक्शन जुड़ चुका था और वो चाहकर भी इस कनेक्शन से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते थे। उस वक्त एक काली शक्ति के वश में आकर वो एक काली शक्तियों की औरत के साथ जिस्मानी रिश्ता बन चुके थे और वो ये भी जानते थे कि वो औरत माँ बनने वाली थी, तो कहीं ना कहीं अमन के पिता के मन में अपने उसे बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं फीलिंग्स थी, जिस बच्चे को उन्होंने देखा तक नहीं था। हालांकि ये बात अमन के पिता को नहीं पता था कि वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि अमन का बचपन का दोस्त अमित ही था, जो शुरू से ही बदला लेने के लिए अमन के आसपास रहा करता था। अभी तो फिलहाल वो इस बात को लेकर ही थोड़ा सा डर सा गए थे कि अगर जिन्नातों का वंशज इस दुनिया में आएगा तो क्या वो उनके उस बच्चों को भी मार देगा, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर उन्हें काफी ज्यादा बुरा सा लग रहा था। क्या तारा वक्त रहते अमन को पिशाच बनने से रोक पाएगी? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।